أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وهو خير الناصر ومعين. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، أما بعد. السلام علیکم دوستوں، ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اپنے پروگرام کو لے کر. پروگرام میں آپ کا سواگت ہے. پچھلے پروگرام میں ہم آپ کے سامنے طلاق کے سلسلے میں گفتگو کر رہے تھے، اور اس کے بعد ہم نے عدت کی گفتگو کی، اور پھر وفات کی عدت کے بارے میں بیان کیا. اب یہاں پر آج ہمیں آپ کے سامنے وقف کے سلسلے میں بیان کرنا ہے. سب سے پہلے وقف کسے کہتے ہیں؟ وقف جو ہے وہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جو آج کل کے زمانے میں دامنگیر ہے، اور تقریباً جو ہے وہ کم و بیش سبھی افراد اس سے واقف ہیں. وقف یعنی انسان اپنی کسی ملکیت کو، کسی جائیداد کو، کسی سمپتی کو، اپنی ملکیت میں سے، اپنی سمپتی میں سے کسی چیز کو دوسرے کی ملکیت بنا دیتا ہے، اللہ کی راہ میں، کار خیر میں، یعنی اس نیت سے کہ اس کا فائدہ جو ہے وہ نہیں اللہ کی راہ میں خرچ ہو، نیک کاموں میں خرچ ہو. وقف کی جو ہیں وہ دو قسمیں ہیں، ایک تو ہے وقف عام اور دوسرے وقف خاص. وقف عام وہ وقف ہے کہ انسان اپنی کسی چیز کو اپنی ملکیت سے نکال کر عام لوگوں کے لیے وقف کر دیتا ہے، یعنی کوئی خاص انسان یا کوئی خاص گروپ جو ہے وہ معین نہیں ہے اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے، اس کو استعمال کرنے کے لیے، بلکہ جو ہے وہ عام لوگوں کے لیے وقف کر دیتا ہے. مثال کے طور پر جو ہے وہ زمین کو مسجد کے لیے وقف کر دیا ہے کہ اس زمین پر مسجد بنائی جائے. اب مسجد جو ہے وہ عام ہے، کوئی بھی آ کر وہاں نماز پڑھ سکتا ہے. دوسرا جو وقف خاص ہے، وقف خاص کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے کسی ملکیت کو خاص افراد کے لیے وقف کرتا ہے. مثال کے طور پر جو ہے وہ کسی چیز کو امام جماعت کے لیے، یا کسی چیز کو جو ہے وہ مدرسے کے طلاب اسٹوڈنٹس کے لیے جو ہے وہ وقف کر دیتا ہے. مثلا کوئی انسان جو ہے وہ پانی کی ٹنکی جو ہے، یا واٹر فلٹر مشین جو ہے وہ کسی یونیورسٹی میں، کسی کالج میں لا کر رکھ دیتا ہے، اور اس کالج کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے وقف کر دیتا ہے کہ فقط جو اس کالج میں پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں وہ اس کو یوز کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ جو ہے کوئی استعمال نہیں کر سکتا. یا مدرسے میں کوئی انسان وضو خانہ بنوا دیتا ہے، اور وضو خانہ جو ہے وقف کر دیتا ہے صرف مدرسے کے طلاب اور اساتذہ کے لیے. ایسی صورت میں جو ہے وہ وقف خاص ہے، اور ان لوگوں کے علاوہ کوئی اور اس کو استعمال نہیں کر سکتا ہے. اب یہاں پر جو ہے وہ وقف کے شرائط ہیں جن کو ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے، لیکن وقف کے شرائط میں جو ہے وہ مختلف طریقے کی شرطیں ہیں. کچھ شرائط جو ہے وہ اس انسان کس سے متعلق ہیں جو کسی چیز کو وقف کرتا ہے، جسے واقف کہا جاتا ہے. دوسرے جو کچھ شرائط خود جو چیز وقف کی جا رہی ہے اس سے مربوط ہیں. اس کے بعد جو ہے کچھ شرائط ایسے ہیں کہ جن لوگوں کے لیے وقف کیا جا رہا ہے ان سے مربوط ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ اور شرائط ہیں جن کو ہم جو ہے ایک کے بعد دوسرے آپ کے سامنے بیان کریں گے. سب سے پہلے واقف، یعنی جو انسان کسی چیز کو وقف کر رہا ہے، اس کے شرائط آپ کے سامنے بیان کریں گے. سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جو انسان کسی چیز کو کسی کے لیے وقف کر رہا ہے وہ بالغ ہونا چاہیے اور عاقل ہونا چاہیے. لہذا اگر کوئی نابالغ بچہ یا کوئی دیوانہ اور پاگل کسی چیز کو، اپنی کسی ملکیت کو، کسی سمپتی کو کسی کے لیے وقف کر دیتا ہے تو یہ وقف صحیح نہیں ہے، بلکہ یہ اسی کا مال رہے گا اور اس کے مرنے کے بعد اس کے وارثوں کو ملے گا. دوسری شرط یہ ہے کہ اختیار اور اپنی مرضی سے جو ہے وہ وقف کرے، کسی کی زبردستی، کسی کے مجبور کرنے سے وقف نہ کرے. تیسری چیز جو ہے وہ जो इंसान वक्फ कर रहा है अपनी किसी संपत्ति को किसी खास अफराद के खास फर्द के लिए या आम मसलहत के लिए, वो इंसान जो है शारए मुकद्दस की तरफ से, वो इंसान जो है वो हाकिम शरा की तरफ से मना न किया गया हो उसको अपना माल खर्च करने के लिए। जो हमने पहले बयान किया था कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको जो है वो हाकिम शरा अपना माल खर्च करने की वजह से मना कर देता है, जिनमें जो है वो दीवाना है, मजनून है, सफ़ी है, और जो हमने आपके सामने सब बयान किया था, वो जो है अगर इनमें से कोई शख्स किसी चीज़ को वक्फ करता है तो वो चीज़ वक्फ नहीं हुई है। इसके बाद जो है वो उस माल के शराइत हैं कि जिसको वक्फ किया जा रहा है, जिसमें सबसे पहली शर्त ये है कि वो खुद उसी शख्स की संपत्ति हो जो उसको वक्फ कर रहा है, यानी उसकी मिल्कियत हो। ऐसा ना हो कि किसी दूसरे की मिल्कियत को जो है वो वक्फ कर दे कि ये फलाने की मिल्कियत है, फलाने की ज़मीन है और मैं इसे मस्जिद के लिए वक्फ करता हूँ, ऐसा नहीं हो सकता, ये सही नहीं है। या मिसाल के तौर पर जो है वो कोई इंसान जो है दादा की ज़मीन को जो है अभी उसके वैसे में नहीं आई है, दादा भी ज़िंदा है, बाप भी ज़िंदा है, और पहले ही से वक्फ कर देता है कि मैंने जो है अपने हिस्से को वक्फ कर दिया है, अभी उसको पहुँचा ही नहीं है, उसकी मिल्कियत नहीं हुआ है, लिहाजा जो है वक्फ नहीं कर सकता। दूसरी शर्त यह है कि जो चीज़ वक्फ की जा रही है उससे जो फ़ायदा होता है वो हलाल होना चाहिए, यानी उसको जिस चीज़ में यूज़ किया जाता है, जिस चीज़ में इस्तेमाल किया जाता है वो हलाल चीज़ होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि उसका इस्तेमाल जो है वो हराम कामों में होता हो। मिसाल के तौर पर कोई इंसान जो है वो शतरंज जिससे खेला जाता है उसको जो है किसी के लिए वक्फ कर देता है कि मैं ये फला साहब के लिए वक्फ कर देता हूँ, तो ये नहीं हो सकता, सही नहीं है। या इसी तरीके से और कोई ऐसी चीज़ कि जिससे जो है वो सिर्फ हराम काम होता है उसको वक्फ नहीं किया जा सकता है। इसके बाद जो है वो तीसरी शर्त ये है कि वक्फ जो चीज़ की जा रही है वो ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि इस्तेमाल करने से वो खुद ख़त्म ना हो जाती हो। मिसाल के तौर पर कोई इंसान खाना वक्फ करे उसको वक्फ नहीं किया जाता है, किया जा सकता, क्यों? इसलिए कि जैसे खाने को इस्तेमाल करेंगे यानी खाएंगे वो ख़त्म होता चला जाएगा। एक शर्त ये है कि जब उस चीज़ को इस्तेमाल किया जाए तो वो ख़त्म ना होती हो, यानी उसका असल जो है वो बाकी रहे। मिसाल के तौर पर ट्यूबलाइट वक्फ की जाए, कैमरा वक्फ कर दिया जाए मस्जिद या इमाम बारगाह को, या कोई और चीज़ वक्फ की जाए। मिसाल के तौर पर जैसे चटाइयाँ वक्फ की जाती हैं, सजदगाहें वक्फ की जाती हैं, और टोपियाँ तस्बीह हैं और जो भी चीज़ें वक्फ की जाती हैं, ऐसी होनी चाहिए कि जब उनको इस्तेमाल करें तो वो खुद ज़ाय ना हो जाती हो, यानी इस्तेमाल करने से ख़त्म ना होती हों। खाना वगैरह वक्फ नहीं किया जा सकता, क्यों? इसलिए कि जैसे जैसे इस्तेमाल करेंगे वैसे वैसे ख़त्म होता रहेगा। अब मुमकिन है कोई सवाल करे कि जनाब अगर कोई मस्जिद में खाना देना चाहे नमाजियों के लिए तो उसको क्यों वक्फ नहीं कर सकता, उसको क्यों नहीं दे सकता है? तो देखिए, हम कह रहे हैं वक्फ नहीं कर सकता है, दे सकता है, क्यों नहीं दे सकता है? उसको या तो नज़र शुमार किया जाएगा या और कोई नेक काम शुमार किया जाएगा, लेकिन वक्फ शुमार नहीं किया जाएगा और वक्फ के अहकाम जो है उस पर जारी नहीं होंगे। चौथी चीज़ जो है, चौथी शर्त उस माल के लिए जिसको वक्फ किया जा रहा है वो ये है कि ऐसी चीज़ हो कि जिसको जो है वो किसी की हवाले किया जा सकता हो, किसी की मिल्कियत में दिया जा सकता हो, ऐसी चीज़ ना हो जिसको किसी के हवाले ही ना किया जा सके। मिसाल के तौर पर एक इंसान का घोड़ा जो है वो भाग गया है, या किसी के घोड़े को किसी ने चुरा लिया है, और वो आए इमाम बारगाह में और आने के बाद कहे कि जनाब मैंने अपना घोड़ा जो है वो इमाम बारगाह के लिए वक्फ कर दिया है, जब घोड़ा है ही नहीं, फरार कर गया है, भाग गया है, या उसको किसी ने चुरा लिया है, तो अब वो जो है वो तहवील में नहीं दिया जा सकता है, लिहाजा उसको फ़िलहाल वक्फ नहीं किया जा सकता है। ये लिहाजा ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि जिसको वक्फ कर, यानी जिसको जो है वो किस हवाले किया जा सके और मिल्कियत में दिया जा सके। उसके बाद जो है वो शराइत उनके हैं कि जिनके लिए वक्फ किया जाता है, उनके लिए क्या शर्त है? सबसे पहले तो मुअय्यन होना चाहिए कि किसके लिए वक्फ किया है जो चीज़ वक्फ की जा रही है। मिसाल के तौर पर ज़मीन वक्फ कर रहे हैं तो मस्जिद के लिए वक्फ है या इमाम बारगाह के लिए वक्फ है, ये चीज़ जो है वो मुअय्यन होनी चाहिए। दूसरे जो है वो अगर वक्फ ख़ास है यानी ख़ास अफराद के लिए, अफराद मुअय्यन हैं तो वो जो है मौजूद होने चाहिए। मिसाल के तौर पर जो है अगर कोई इंसान इमाम जमात के लिए किसी चीज़ को वक्फ कर रहा है तो वहाँ पर इमाम जमात का तसव्वुर पाया जाता हो, मस्जिद हो, मस्जिद में जो है वो इमाम जमात हो। ये नहीं कि वहाँ जो है ना कोई मस्जिद है ना कभी यहाँ इमाम जमात आया है और कोई इंसान आए और आने के बाद कहे कि मैंने जो है मिसाल के तौर पर एक रिदा लाई या एक लिबास लाई कि मैंने इस लिबास को इमाम जमात के लिए वक्फ कर दिया, जब वहाँ इमाम जमात का कोई तसव्वुर ही नहीं है, कभी आए नहीं है ना कोई प्रोग्राम है। तो ऐसी सूरत में भी उस वक्त वक्फ सही नहीं है। दूसरे ये कि अगर वक्फ आम हो तो जिस वक्त वक्फ किया जा रहा है उस वक्त जो है उनका मौजूद होना जो है मुमकिन हो, यानी वक्फ आम है मिसाल के तौर पर मस्जिद के लिए ज़मीन वक्फ की जा रही है, तो ऐसे मौके पर ज़मीन वक्फ की जा रही हो, ऐसी जगह पर ज़मीन वक्फ की जा रही हो कि जहाँ मुसलमान मौजूद हों। अगर जो है किसी ऐसी जगह पर ज़मीन वक्फ की जाए कि जहाँ मुसलमानों का तसव्वुर ही नहीं पाया जाता है, जहाँ मुसलमान है ही नहीं, तो वहाँ जो है मस्जिद का कोई फ़ायदा नहीं है। या ये कि मिसाल के तौर पर वहाँ से मुसाफिरीन का ज़्यादा गुजर होता हो, मुसाफिरीन आते हों ठहरते हों, तो ऐसी सूरत पर भी जो है वहाँ ला कर उनको पेश किया जा सकता है जहाँ वक्फ किया जा रहा है, ये भी सही है। लेकिन अगर जो है वो किसी तरह की कोई ज़हनियत ही नहीं ना ही हो, मिसाल के तौर पर किसी ऐसी जगह पर जो है किसी ज़मीन को इमाम बारगाह के लिए वक्फ करना कि जहाँ से जहाँ ना मजलिस का तसव्वुर किया जा सके कि वहाँ पर ऐसे मकाम पर जो है वो मजलिस होगी या वहाँ आबादी हो या वहाँ से जो है वो मजलिस करने वालों का गुजर होता हो, ऐसा सब ना हो, तो फिर वहाँ जो है वो वक्फ के कोई माना नहीं है। मिसाल के तौर पर एक इंसान जो है वो किसी चोटी पर जा पहाड़ की चोटी पर जाने के बाद जो है जहाँ ना आबादी का वहाँ तसव्वुर हो, शिया और मुसलमान तो दूर की बात, वहाँ आबादी का तसव्वुर ना हो, कोई कहे कि मैं जो हूँ इस चोटी को पहाड़ सरकार से ख़रीद रहा हूँ और ख़रीदने के बाद जो है वो इमाम बारगाह के लिए वक्फ कर रहा हूँ, नहीं, बल्कि ऐसी जगह होनी चाहिए कि जहाँ जिन के लिए वक्फ किया जा रहा हो वो लोग अगर हाजिर नहीं हैं तो हाजिर हो सकते हों। ये शराइत उनके हैं जिनके लिए वक्फ किया जाता है। अब जो है चंद एक शर्तें और हैं जो हम आपके सामने बयान करें और फिर आज का प्रोग्राम हमारा यहीं पर तमाम हो जाएगा। सबसे पहली शर्त यह है कि वक्फ का सेगा जो है वो ऐसे अल्फाज में बयान किया जाए कि जिससे ये बात जाहिर हो जाए कि किसी चीज़ को वक्फ किया जा रहा है, किसी चीज़ को वक्फ करने का इरादा है, यानी ऐसे अल्फाज से अदा किया जाए कि जिससे जाहिर हो जाए बात के फला शख्स जो है किसी चीज़ को कुछ के लोगों के लिए, मस्जिद के लिए, इमाम बारगाह के लिए, मदरसे के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए किसी चीज़ को वक्फ कर रहा है। दूसरी शर्त यह है कि वक्फ जो है वो दायमी होना चाहिए, यानी हमेशा हमेशा के लिए वक्फ कर रहा है, टाइम मुअय्यन नहीं होना चाहिए, यानी मुद्दत मुअय्यना के लिए वक्फ नहीं किया जा सकता। मिसाल के तौर पर कोई इंसान जो है वो एक ट्यूबलाइट लेकर आए और लाने के बाद जो है वो मस्जिद में कहे कि मैं जो हूँ इसको एक हफ्ते के लिए मस्जिद के लिए वक्फ कर रहा हूँ, ये सही नहीं है। आप कहेंगे कि जनाब फिर अगर कोई मस्जिद में इंतज़ाम नहीं है और अगर कोई अपनी लाइट वगैरह लाना चाहे ताकि अंधेरा ख़त्म हो जाए, नमाजी नमाज़ पढ़ सकें, इफ्तार का वक्त हो तो इफ्तार कर लें, तो क्या वो नहीं ला सकता है? ला सकता है, लेकिन उसको वक्फ नहीं कहेंगे, उसको जो है वो दूसरे नेक कामों में शुमार किया जाएगा। इसके बाद जो है वो तीसरी शर्त यह है कि एहतियात की बिना पर वक्फ जो है वो मुस्तकिल होना चाहिए, यानी अनडिपेंडेंट होना चाहिए, किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं होना चाहिए, किसी शर्त पर जो है वो मशरूत और मौकूफ़ नहीं होना चाहिए, मालक नहीं होना चाहिए। मिसाल के तौर पर इंसान जो है अपने ज़मीन को मस्जिद के लिए वक्फ करे लेकिन उसके साथ ये शर्त लगाए अगर इस साल इस ज़मीन ने अगर इस साल इस ज़मीन ने जो है वो अच्छी पैदावार हमें दी या अच्छी फसल इसमें हुई तो हम इसको जो है वो वक्फ कर देंगे, ये नहीं। या अगर हमारा वो दूसरा मकान जो है वो 50 लाख का बिक गया तो हम इस मकान को जो है वो मस्जिद के लिए वक्फ कर देंगे। ये तमाम शराइत और कायदे जो हैं वो वक्फ में नहीं होनी चाहिए, बल्कि एहतियात ये है कि इंडिपेंडेंट यानी मुस्तकिल होना चाहिए। इसके बाद जो है वो आखिरी शर्त ये है कि वक्फ जब इंसान कर रहा हो तो दूसरों के लिए वक्फ कर रहा हो, खुद अपने लिए नहीं। क्यों? इसलिए कि खुद तो उसका मालिक है ही। अगर वक्फ करना है तो दूसरों के लिए वक्फ करना पड़ेगा। अगर खुद अपने लिए किसी चीज़ को रख रहा है तो वो वक्फ नहीं है बल्कि उसका मालिक है, और यहाँ पर जो है वो वक्फ के अहकाम शामिल नहीं होंगे। दोस्तों, हमारा प्रोग्राम आज का यहीं पर तमाम हो जाता है। अगले प्रोग्राम में फिर आपके सामने हाजिर होंगे और वक्फ के अहकाम आपके सामने बयान करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।